श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्य वचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको फिर से एक बार मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज भी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि के बारे में देखा था, जिसे हारून ने चढ़ाया। और इतना ही नहीं, उसने लोगों को आशीर्वाद भी दिया और परमेश्वर की महिमा भी प्रकट की। आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 10 से आरंभ करेंगे और इसमें हम नादाब और अबीहू याजक पद बिना अधिकार उपयोग करते हैं जिसका दंड मृत्यु है, इसके विषय में देखेंगे। लयव्यवस्था की पुस्तक में कथा कम है, परंतु यह आदेश, निर्देश, धर्म विधियां, नियम और कानून आदि से भरपूर है। यह अध्याय दूसरों से भिन्न है क्योंकि इसमें एक कथा है, तो भी रोचकता कम है क्योंकि एक भयानक त्रासदी का वर्णन मिलता है। मित्रों, मानव के पाप के इतिहास की लंबी श्रृंखला में एक बड़ा धब्बा है, हारून के दो पुत्रों का विद्रोह और आज्ञा उल्लंघन का वर्णन है। पिछले अध्याय में महिमामय समर्पण दिवस की चर्चा हुई है। ऐसा अक्सर होता रहता है, विजय के उत्सव के बाद हार भी होती है, जैसा यहोशू की पुस्तक में यरीहो पर विजय के पश्चात ए नगर में उनकी हार हुई थी। मित्रों, नादाब और अबीहू का दुस्साहस सिनै पर्वत पर परमेश्वर की स्पष्ट शिक्षा के संदर्भ में भयभीत करने वाला है। हम निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसके 22 पद में पढ़ते हैं, और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। निर्गमन 30 अध्याय उसके 34 से 38 पद में परमेश्वर ने मूसा को मिलाप शिविर में पवित्र सुगंध द्रव्य का तरीका सुझाया। प्रभु ने मूसा से कहा, तू ये सुगंधित मसाले ले, गंधरस, नखी, गंध विरोजा, गंध दत्त, स्वच्छ लोबान, जैसे एक गंधी इत्र बनाता है वैसे इनमें नमक सम्मिश्रित धूप बनाना जो शुद्ध और पवित्र हो, उसमें से कुछ मिलन शिविर में साक्षी पात्र के सम्मुख रखना, जहां मैं तुझसे मिला करूंगा वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगी। जो धूप तू बनाएगा वैसे ही सम्मिश्रण के द्वारा तुम अपने लिए मत बनाना, तू उसको अपने प्रभु के लिए पवित्र मानना। जो कोई व्यक्ति सूंघने के लिए इसके सदृश धूप बनाएगा वह अपने समाज में से नष्ट किया जाएगा। निर्गमन 30:34 से 38 पद में हम पाते हैं। मित्रों, व्यवस्था या नियम के युग के आरंभ से ही इस घटना द्वारा परमेश्वर की पवित्रता का प्रतिपादन भी हुआ है। अनुग्रह के युग के आरंभ में हनन्याह और सफीरा की घटना ने भी ईश्वर की पवित्रता को प्रतिपादित किया है। मृत्यु ही दोनों ही परिस्थिति में दंड का कारण बनी। हमारा ईश्वर पवित्र है और वह अपने बालकों से इसी स्तर पर भेंट करता है। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 29 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं, हमें वर्तमान में इससे सीखना चाहिए, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। इस बात को आज हमें पहचानना चाहिए। इब्रानियों 12 अध्याय उसके 25 में एक बड़ी चेतावनी है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। मित्रों, वर्तमान युग का यह महापाप है। परमेश्वर ने जो कुछ उसके वचन में कहा उसे सुनना नहीं चाहते हैं। तो आइए हम इसकी रूपरेखा को देखें। याजकों पर प्रतिबंध अध्याय 10, नादाब और अबीहू की मृत्यु। पहला, नादाब और अबीहू जो हारून के पुत्र थे की मृत्यु, पद 1 से 5। दूसरा, घटना से प्रकट हुए निर्देश, पद 6 से 11। तीसरा, घटना से संबंधित बलिदानों के विषय, निषेधाज्ञा, पद 12 से 20, हारून के पुत्र नादाब और अबीहू से संबंधित घटना। हम लय व्यवस्था की पुस्तक 10 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पढ़ते हैं। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख आरती दी। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। मित्रों, ऐसा तर्क दिया जा सकता है कि इस घटना के संदर्भ में दिया गया दंड बहुत अधिक था, परंतु जो परमेश्वर ने कहा उस पर ध्यान दें। जो आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी, इससे अपराध की गंभीरता को जाना जा सकता है। यह जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ही तो है। संक्षिप्त में, उन्होंने क्या किया? वे ईश्वर के ऐसे गंभीर न्याय को अपने ऊपर लाए। यह कार्य स्वेच्छा आराधना कही जा सकती है, और है भी। उनकी गलती क्या थी? मेरे पास इसके 3 सुझाव हैं। पहला, संभवतः वेदी पर रखे कोयले से सुगंधित द्रव्यों को नहीं जलाया, वह अग्नि स्वर्ग से उतरी थी। ऐसा दिख पड़ता है कि ऐसा ही होना चाहिए। प्रायश्चित के महान पर्व के दिन ऐसी ही प्रथा थी, जैसा लय व्यवस्था की पुस्तक 16 अध्याय उसके 12 पद में है। उस पर से जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूप दान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर। मित्रों, इसी प्रकार के धार्मिक विधि की चर्चा कोरह के विद्रोह के समय में मिलती है, जिसे हम गिनती की पुस्तक 16 अध्याय उसके 46 पद में पाते हैं। ऐसा मानना होगा कि यही तरीका सही था। जिस तरीके को इन्होंने अपनाया वह ईश्वर के इच्छा या तरीके से भिन्न था। दूसरा है, उनका समय ईश्वर द्वारा धर्म विधि से मेल नहीं खाता है। दिन के सभी धार्मिक कृत्य समाप्त हो चुके थे, उनको हारून से आज्ञा प्राप्त करनी थी। स्पष्ट है कि वे पिछले अध्याय के अद्भुत दृश्य की पुनरावृत्ति चाहते थे। क्या आज भी ऐसी समस्या नहीं है? जब हम अपनी स्वेच्छा आराधना से जो ईश्वर ने किया उसे दोहराना चाहते हैं। अनेक लोग पेंतिकोस्त के अनुभव को भी दोहराना चाहते हैं। परमेश्वर सर्वोच्च है, उसकी इच्छा का पालन समय के बारे में भी होना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा स्वेच्छा से कार्य करता है, हमें केवल अपने को उसके लिए उपयुक्त बनाना और आज्ञा पालन करना है। तीसरी बात, दूसरे अनेक लोग सोचते हैं कि पर्दे के अंदर घुसना मना था जिसका पालन नहीं किया। उनके दृष्टिकोण को न्यायोचित कहा जा सकता है। देखें लय व्यवस्था की पुस्तक 16 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, जब हारून के दो पुत्र यहोवा के समीप जाकर मर गए, यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय न प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित ढकने वाले बादल में दिखाई दूंगा। मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि यह रुकावट या बाधा नादाब और अबीहू की घटना का ही परिणाम है। उनकी गलती थी कि वे उस स्थान पर गए जहां नहीं जाना चाहिए। ईश्वर ने उन्हें समय, स्थान और तरीके के बारे में पहले से आदेश दिया था। तीनों ही बातों में वे चूक गए। कुछ लोग अभी भी सोचेंगे कि परमेश्वर निश्चित ही गंभीर शल्य चिकित्सक उपयोग में लाएंगे। यह प्रकट करता है कि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला है, अर्थात जलन रखने वाला ईश्वर है। अपने सारे व्यवहार में वह स्वतंत्र सर्वोच्च है, और जो उसके समीप आना चाहते हैं उन्हें उसकी शर्त पर आना होगा। यह भी सच है कि बलिदान चढ़ाने से आज्ञा पालन उत्तम है। परमेश्वर हमारी स्वेच्छा की आराधना स्वीकार नहीं करता, चाहे वह कितनी भी ईमानदारी से हो। हमें यह भी नोट करना चाहिए कि इन दोनों के उच्च पद से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। मित्रों, अचानक न्याय का लागू करना घबरा देने वाला भी है। यह वक्तव्य भी नहीं छिपाया गया कि अग्नि ईश्वर की ओर से थी। हमें यह भी समझना होगा कि न्याय इस अनुग्रह के जमाने में नामुमकिन नहीं है। ऐसा हमेशा अचानक नहीं होता। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 उसके 30 पद में लिखा है, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। हनन्याह और सफीरा की घटना में यह अचानक और निश्चित भी था। इसका यह भी मतलब नहीं है कि मसीह में विश्वासी अपने उद्धार को खो बैठता है। नादाब और अबीहू, हनन्याह और सफीरा ने उधार नहीं खोया, और न ही कुरिंथ की मंडली ने। यह बहुत ही स्पष्ट है कि यदि हम अपने को जांचते तो दंड नहीं पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। पहला कुरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय उसके 31 और 32 पद में हम इसे पाते हैं। मित्रों, परमेश्वर के बालक के लिए शारीरिक मृत्यु अक्षर न्याय साबित होता है। एक पाप जो मृत्यु है, पहला योहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 16 पद में हम पाते हैं, परंतु यह शारीरिक मृत्यु है। ईश्वर का बच्चा या संतान संसार के साथ नष्ट नहीं हो जाता। नए और पुराने नियम की ये घटनाएं विश्वासियों के लिए नमूना है कि वह स्वेच्छा आराधनाओं का पोषक नहीं है। विश्वासियों को ईश्वर के मार्ग से ही उस तक पहुंचना है, परमेश्वर के बताए ढंग से ही आराधना करनी चाहिए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 19 से 22 पद में हम पाते हैं कि हमें ईश्वर के निकट निडर होकर आना है, परंतु इसके लिए प्रभु यीशु का लहू चाहिए। हम आते हैं क्योंकि परमेश्वर के घर पर हमारा एक महायाजक है। विश्वास के पूर्ण आश्वासन के साथ हमें आना है, क्योंकि जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको। लय व्यवस्था 10 अध्याय उसका 10 पद। इस प्रकार का विचार न रखें कि आज अब ईश्वर इस प्रकार न्याय नहीं करेगा। मित्रों, एक व्यक्तिगत अनुभव है। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, भाई आप कैंसर से पीड़ित थे, आपको मालूम है कि वह अभी भी आपके शरीर में है, क्या आप यह नहीं सोचते कि यह परमेश्वर का न्याय है आपके ऊपर में? मैंने इस भाई से कहा, आप जानते हैं कि मैं रात की खामोशी तथा अंधेरे में जागता था। मैंने भी ऐसे ही सोचा और ईश्वर को पुकार कर कहा, आपसे मैं कहता हूं अपने आप को अलग नहीं करता। यदि हम अपने को नहीं जांचे, परमेश्वर हमें जांचेगा ताकि हम संसार के साथ नष्ट न हो जाएं। परमेश्वर सब कुछ अच्छा ही करता है। जब मैं आपसे ये बातें करता हूं तो याद रहे कि इनसे मैं गुजर रहा हूं। इस भले आदमी को पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। मित्रों, कैसे अजीब उदाहरण है कि किसी समय प्रभु यीशु इस खोए हुए संसार का न्याय करेंगे। हनोक ने इसका प्रचार किया, उसका कथन और भविष्यवाणी है। यहूदा 14 से 15 में लिखा हुआ है, हनोक ने भी जो आदम से सातवीं पीढ़ी में था इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब काम के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है दोषी ठहराए। मित्रों, पत्रस भी यही बात कहते हैं, पहला पत्रस 4 उसके 18 पद में, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। हम लय व्यवस्था 10 अध्याय उसके 3 से 5 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे, और हारून चुप रहा। तब मूसा ने मिशाएल और इल्साफान को जो हारून के चाचा उजेल के पुत्र थे बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। मित्रों, जब यह समाचार इसराइल के चारों ओर कोने कोने तक पहुंचा तो निश्चित ही इन जवानों की लाश को देखने के लिए मिलाप तंबू के निकट बहुत से लोग इकट्ठा हुए होंगे। मूसा ने इस न्याय के स्पष्टीकरण में प्रभु के वचनों को उद्धृत किया, निर्गमन 19 उसके 22 पद में, और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मित्रों, वे लोग जो परमेश्वर के अति निकट आते हैं उनसे ईश्वर पवित्रता और धार्मिकता की विशेष अपेक्षा करता है। आमोस की पुस्तक 3 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। मित्रों, जैसा ईश्वर ने इसराइल के लोगों का न्याय चुकाया उसी प्रकार ईश्वर आज भी संतों का न्याय करते हैं कि संसार जाने कि वह पवित्र परमेश्वर है। हारून का आचरण और व्यवहार यहां ध्यान देने योग्य है कि लोगों के उच्च पद पर होने से उन्हें विशेष प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होती, वह परमेश्वर की इच्छा के सामने टूटा हुआ हृदय और अधीनता से नतमस्तक हो जाता है। उसका दुख अपार था, परंतु परमेश्वर की इच्छा के समक्ष कुछ भी नहीं कर सका। आपने परमेश्वर को कहते ध्यान से सुना, जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। मित्रों, मूसा ने दो याजकों को बुलाया जो मृतक लोगों के चचेरे भाई थे, ताकि वे लाश को पवित्र स्थान से बाहर ले जाएं। जब लोग आश्चर्य से आंख फाड़कर देखते थे कि उन्हें शिविर से बाहर ले जाया गया, तो इस घटना से प्राप्त निर्देश हम आगे देखते हैं। 10 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा हुआ है, तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और इतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और ना अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। परंतु वह इसराइल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु हैं, यहोवा की लगाए हुए आग पर विलाप करें, और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। मित्रों, हारून और उसके दोनों पुत्रों पर प्रतिबंध लगा कि वे सार्वजनिक तौर पर कोई विलाप न करें। इसके दो कारण हैं। पहला स्पष्ट है कि प्रभु का अभिषेक तेल उन पर डाला था, उनको ईश्वर के समक्ष लोगों का प्रतिनिधित्व करना होता था और वे लोगों के बीच ईश्वर के प्रतिनिधि थे। उन्हें उनके पद पर आसीन रहना था कि ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ बने रहें, ताकि लोगों पर उसके क्रोध के कारण न्याय और मृत्यु नहीं आने पाए। दूसरा, बाहरी तौर पर विलाप का शोक नहीं मनाना था, जिससे परमेश्वर का न्याय उसके प्रिय लोगों पर जो पड़ता है उसमें विरोधाभास ना दिखाई पड़े। यहां यह भी समझना है कि वे दुखी और टूटे हृदय से अपने पद पर काम करने चले गए। वे परमेश्वर के सेवक थे और उन्हें किसी प्रकार का विद्रोह या रोष नहीं प्रकट करना था। और परमेश्वर ने हारून से कहा, लय व्यवस्था 10 अध्याय उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, फिर यहोवा ने हारून से कहा कि जब जब तू व तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई न तो दाख मधु पिए हो न और किसी प्रकार का मद, कहीं ऐसा न हो कि तुम मर जाओ, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे। मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि नादाब और अबीहू ने मद्यपान के प्रभाव में आकर यह सब किया। धर्मशास्त्र में शराब व नशेबाजी का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों का एक उत्कृष्ट नमूना यहाँ मिलता है। पुरोहित को प्रभु की सेवा एक स्वच्छ शरीर और संयम मन से करना चाहिए। आजकल धर्म में नशीली वस्तुओं के सेवन के पक्ष में अनेकों अगुए मिलते हैं। मेरे मित्र, इस प्रकार की विचारधारा को ईश्वर पसंद नहीं करते। इसी विचार को ध्यान में रखकर संत पौलुस ने कहा, मदिरा पीकर मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। विश्वासी को उसकी उत्साहवर्धक प्रेरणा इत्यादि प्रभु की आत्मा से प्राप्त करना चाहिए, न कि मानवीय निर्बल वस्तुओं से। कितनी सुंदर शिक्षा व निर्देशन मद्यपान नशीली वस्तुओं के सेवन के बारे में हमें यहाँ पर मिलता है। लय व्यवस्था की पुस्तक 10 अध्याय उसके 10 और 11 पद में आगे हम पढ़ते हैं, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको और इसराइलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको सुनवा दी है। मित्रों, मद्यपान से इंद्रिय धूमिल हो जाती है और पवित्र और अपवित्र में कुछ अंतर नहीं दिखता। सच्चे मानव मूल्यों का ध्वास होता है और मदिरा व अन्य नशीली चीजों के सेवन के परिणाम स्वरूप नैतिक पतन भी होता है। याजक एवं पुरोहित को परमेश्वर के नियम सिद्धांतों का पालन करना चाहिए तथा लोगों को भी सिखाना होगा। परमेश्वर के वचन की गूढ़ शिक्षाओं के अध्ययन में पवित्र आत्मा की भरपूरी की नितांत आवश्यकता चाहिए। घटना से संबंधित एवं बलिदानों के संदर्भ में निषेधाज्ञा, आइए हम देखें लय व्यवस्था की पुस्तक 10 अध्याय उसके 12 से 15 पद में लिखा है, फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र इतामार और एलियाजर से भी कहा, यहोवा के हव्य में से जो अनबलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ, क्योंकि वह परम पवित्र है और तुम उसे किसी पवित्र स्थान में खाओ। वह तो यहोवा के हव्य में से तेरा और तेरे पुत्रों का हक है, क्योंकि मैंने ऐसी ही आज्ञा पाई है। और हिलाई हुई भेंट की छाती और उठाई हुई भेंट की जांघ को तुम लोग अर्थात तू और तेरे बेटे बेटियां सब किसी शुद्ध स्थान में खाओ, क्योंकि वे इसराइलियों के मेल बलियों में से तुझे और तेरे लड़के वालों की हक ठहरा दी गई है। चर्बी के हव्यों समेत जो उठाए हुए जांग और हिलाए हुए छाती यहोवा के सामने हिलाने के लिए आया करेंगी, ये भाग यहोवा की आज्ञा के अनुसार सर्वदा की विधि की व्यवस्था से तेरे और तेरे लड़के वालों के लिए हैं। मित्रों, अनबलि और मेलबलि से संबंधित आदेशों को मूसा दोहराते हैं। बलिदानों का एक भाग पवित्र स्थान में पुरोहितों द्वारा समाप्त करना था। यह काम अग्निवेदी के पीछे बाह्य आंगन में करना था। यह पवित्र था क्योंकि ईश्वर की सेवा के लिए अलग किया हुआ भाग था। हिलाई गई छाती और कांधे एक स्वच्छ स्थान पर रखना था। अपने घर की शुद्धता करके वहां भी खाने की मंजूरी थी। हम आगे पढ़ते हैं लय व्यवस्था 10 उसके 16 से 18 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मूसा ने पाप बलि के बकरे की जो ढूंढ ढांढ की तो क्या पाया कि वह जलाया गया है। सो एलियाजर और इतामार जो हारून के पुत्र बचे थे उनसे वह क्रोध में आकर कहने लगा कि पाप बलि जो परम पवित्र है और जिसे यहोवा ने तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम मंडली के अधर्म का भार अपने पर उठाकर उनके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करो, तुमने उसका मांस पवित्र स्थान में क्यों नहीं खाया? देखो, उसका लहू पवित्र स्थान के भीतर तो लाया ही नहीं गया। निसंदेह उचित था कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार उसके मांस को पवित्र स्थान में खाते। मित्रों, ईश्वर की इच्छा के विरोध यहाँ एक और दुखद घटना की चर्चा है। हारून के दूसरे दो पुत्रों के भाग में असफलता मिलती है, लेकिन यह एक अकारण पाप है। यह हठी या जानबूझकर किया गया पाप नहीं है, जैसे दूसरे दो मृतकों ने किया था। पाप बलि को पवित्र स्थान में खाना था, जिसे इन्होंने नहीं किया। यद्यपि लहू चढ़ाया गया, परंतु पुरोहितों के भाग को नहीं खाया गया था। शायद बिना इसके महत्व को समझे हुए वे ऐसा करने से चूक गए थे। हम आगे पढ़ते हैं लय व्यवस्था 10 उसके 19 और 20 पद में। इसका उत्तर हारून ने मूसा को इस प्रकार दिया कि देख, आज ही उन्होंने अपने पाप बलि और होम बलि को यहोवा के सामने चढ़ाया, फिर मुझ पर ऐसी विपत्तियां आ पड़ी हैं। इसलिए यदि मैं आज पाप बलि का मांस खाता तो क्या यह बात यहोवा के सम्मुख भली होती? जब मूसा ने यह सुना तब उसे संतोष हुआ। मित्रों, हारून उसके पुत्रों की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता है। स्वाभाविक था कि दुखद दुर्घटना के बाद उसे भूख नहीं लगी। वह ईश्वर के समक्ष लगातार सेवा करने में अपने को अयोग्य समझने लगा। मुझे लगता है कि अब बूढ़ा हारून सेवानिवृत्ति चाहता है। इस घटना से हमारे सीखने के लिए बहुत बड़ी सीख है। ये सभी मनुष्य स्वेच्छा से ईश्वर के समीप आए, वे हठी थे और ईश निंदक भी, अतः ईश्वर ने उनका न्याय चुकाया। लोग पूछते हैं कि क्या यह गलत होगा यदि किसी चर्च के सदस्य बने जो ख्रिस्ट के ईश्वरत्व का इनकार करता है। मित्रों, क्या आप सोचते हैं कि कोई भी जन ऐसे स्थान पर ईश्वर की शर्तों और मनसा के विपरीत आएगा? यदि ईश्वर आज भी नदाब और अबीहो के समान घात करे तो चर्च के लगभग आधे लोग मरेंगे। मसीह के देवत्व हमारे लिए उसका बलिदान एवं क्षमा न ग्रहण करने से अनेकों उदारवादी दंड पाएंगे। अनेक मूल सिद्धांत वाले चर्च सदस्य अपनी दिखावट कपट के कारण हनन्या सफीरा के समान पवित्र आत्मा से झूठ बोलने की सजा पाएंगे। परमेश्वर आज दया का व्यवहार करता है, मनुष्यों को सत्य का ज्ञान और क्षमा के लिए समय देता है, अन्यथा अधिकतर लोग मृतक हो गए होते। मित्रों, आपके और मेरे लिए एक अद्भुत सबक है। जब हम ईश्वर के समीप आते हैं तो हमें उसकी शर्तों को मानना होगा। यह कोई ऐसा प्रबंध नहीं जिसे हम बना सकते हैं। हम नियमावली नहीं बनाएंगे, परमेश्वर ही बचाता है और वह ही बताता भी है कि हम कैसे बचेंगे। प्रभु यीशु मसीह का कथन है कि मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंचता। मित्रों, यह बिल्कुल सही है कि हम मसीह यीशु के बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकते हैं। यदि हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, उसके निकटता में आना चाहते हैं, तो हमारे लिए एक ही मार्ग है कि हम प्रभु यीशु के पास आएं और उसी के द्वारा हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। मित्रों, आज के अध्ययन का समय यहीं पर समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने एक विशेष और महत्वपूर्ण बात को सीखा है कि यदि हम पाप के कारण प्रभु के पास में आए तो हो सकता है कि हम नाश हो जाएं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हम आते हैं तो निश्चय ही उद्धार को पाते हैं। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा को इंसान देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें आजा अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा।